पंचाध्यायी लेक्चर नंबर 5।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
तस्मादनादिनिधनम् स्वसहायम् निर्विकल्पम् च।
यह ग्रंथ राज श्री पंचाध्यायी है और हम उसके पृष्ठ संख्या 8 पर आ गए हैं। कल हमने 22 नंबर का श्लोक पढ़ा था, अभी दोबारा पढ़ के उसका अर्थ देखेंगे। यहाँ बात ये हो रही थी कि यहाँ जो लक्षण बताया है वो सामान्य विशेषात्मक वस्तु का लक्षण बताया है। एक ही वस्तु में जो सामान्य विशेषात्मक वस्तु में जो सामान्य है उसका ये लक्षण नहीं है। दूसरी बात ये भी बताई है कि जो महासत्ता और अवांतर सत्ता है उसकी भी यहाँ ये बात नहीं हो रही है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, ये हम फिर दोबारा देख लेते हैं क्योंकि शंकाकारों की शंका ये थी। देखो ये यहाँ से बात शुरू हो जाती है, द्रव्य सामान्य विशेषात्मक है इसलिए ये जो सत्ता है वो मात्र सामान्य सत्ता या मात्र विशेष सत्ता नहीं है, परंतु दोनों परस्पर सापेक्ष ऐसी सत सामान्य और सत विशेष है, ये बात हो गई। उसके ऊपर फिर शंका समाधान चला था, किसी को हम मुख्य और गौण कर सकते हैं पर सर्वथा सामान्य या सर्वथा विशेष सत्ता होती ही नहीं, जिसको कहेंगे निरंकुश या परनिरपेक्ष, यानी एक दूसरे से निरपेक्ष होती नहीं, पर पदार्थ से कोई सापेक्षता नहीं है। एक ही वस्तु में जो सामान्य विशेष है, सामान्य को विशेष की अपेक्षा है, विशेष को सामान्य की अपेक्षा, यहां तक हमने देखी थी बात। उसके बाद उन्होंने महासत्ता अवांतर सत्ता की भी बात बताई थी। अब महासत्ता किसको कहना है, तो सर्व पदार्थों में जो पाया जाता है सदृशपना, उसको उस अपेक्षा से महासत्ता कहते हैं। सबकी मिलकर एक सत्ता नहीं होती है, हर एक में सत्पना है, ये सत्पना सब में समान है इसलिए सबको मिलकर वो महासत्ता कहते हैं। यानी सत कहने से वो महासत्ता हो जाती है, उसमें सभी द्रव्य अंतर्भूत है, मतलब उसमें प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी सत्ता भिन्न भिन्न है, उसको अवांतर सत्ता कहते हैं। उसी के लिए 22 नंबर का हमने श्लोक पढ़ा था, देखो फिर पढ़ते उसको। एकस्यास्तु विपक्षः सत्ताया स्याददो यनेकत्वं स्यादप्यनन्तपर्ययः प्रतिपक्षस्त्वेकपर्ययत्वं स्यात्। उसका अर्थ ऐसा है, एक सत्ता यानी महासत्ता का विपक्ष अनेका सत्ता यानी अवांतर सत्ता है। एक सपक्ष और विपक्ष ऐसे दो बातें बताएं। अनंत पर्याय का प्रतिपक्ष, अनंत पर्याय यानी महासत्ता का प्रतिपक्ष, एक पर्याय यानी अवांतर सत्ता है। हम तो कुछ नहीं समझे इसलिए भावार्थ में समझा रहे हैं। सत्ता असत्ता विशेषण तो दोनों के लिए प्रयुक्त हो जाते हैं, यानी जब महासत्ता को कह रहे तो अवांतर सत्ता को हम असत्ता कहेंगे, जिसको मुख्य करते हैं उसको सत्ता कहेंगे, जिसको गौण कहकर उसको असत्ता भी कहेंगे, यानी सर्वथा नहीं है वो बात नहीं है, जिसको मुख्य किया है उसको हम सत्ता कहेंगे, जिसको गौण किया है उसको असत्ता कहेंगे, यहाँ क्या कहते हैं, सत्ता असत्ता विशेषण, ये जो सत्ता वाला विशेषण लगाया है या असत्ता वाला, ये किसी के भी हो सकता है। यानी जब हम महासत्ता को सत्ता कहेंगे तो अवांतर सत्ता असत्ता हो जाती है, यदि हम अवांतर सत्ता को सत्ता कहेंगे तो महासत्ता असत्ता हो जाती है। तो कहते दोनों के लिए प्रयुक्त हो जाते हैं, यानी उसमें हम लगा सकते हैं, उसके साथ जोड़ सकते हैं। अर्थात महासत्ता को सत्ता भी कहते हैं और असत्ता भी कहते हैं। असत्ता कब कहेंगे, जब अवांतर सत्ता को सत्ता कहेंगे, मुख्य करेंगे, तो महासत्ता को हम असत्ता कहेंगे। गौण करके असत्ता है, सर्वथा असत है ऐसी बात नहीं। उसी प्रकार अवांतर सत्ता को सत्ता भी कहते हैं, असत्ता भी कहते हैं, किंतु शेष विशेषण जो जिसका है वह उसका ही रहेगा, वे आपस में बदले नहीं जाते। यानी बाकी जो उनकी विशेषताएं हैं, उनका लक्षण है, वो अपना अपना लक्षण है। अभी महासत्ता के लिए अन्य अन्य नाम जो है वो यहाँ बता रहे हैं। विशेष गुण को भी नहीं कही, जैसे हम कहें राजा कैसा है तो हम कहेंगे वो पराक्रमी है, वो उसके विशेषता, उसकी विशेषण। हाँ, गुण भी कह सकते हैं, उसका लक्षण भी कह सकते हैं, परंतु सत्ता में गुण कैसे कहेंगे, वो तो द्रव्य तो है नहीं है।
अपनी अपनी सत्ता जिसने धारण की, जीव द्रव्य या उद्योग द्रव्य,
महासत्ता में क्या कहेंगे, उसका विशेषण लगाएंगे ना,
वो तो सामान्य हो जाएगा
ख्याल में, इसीलिए उसके शब्द यहाँ विशेषण लगाए। महासत्ता का कौन से गुण होंगे, महासत्ता नाम का कोई द्रव्य तो नहीं है, तो उसके गुण विशेष गुण कैसे कहेंगे आप। तो महासत्ता क्या है उसको समझाने के लिए हम उसको जैसे बताएंगे वो उसका विशेषण कहलाएगा। जैसे अभी हमने महासत्ता का विशेषण सत्ता कह दिया, कभी असत्ता कह दिया, तो ये उसका विशेषण होता है। जैसे विशेषण नहीं समझे, जैसे अभी हवा कैसी है तो बहुत गर्म है, तो ये क्या हुआ, उसका विशेषण हुआ,
गर्म उसका विशेषण।
नहीं, ये आदमी कैसा है तो बहुत आलसू है, वो क्या होगा, उसका विशेषण। क्या
विशेषण,
वही उसको सत्ता कहना या उसको असत्ता कहना, उसके विशेषण हो गए। अर्पित अनर्पित में वो मुख्य गौण को कहते हैं।
जब हम महासत्ता की बात कर रहे हैं तो वो मुख्य हो गया, यदि अवांतर सत्ता है कि नहीं है तो उसको गौण कर दिया, तो उसको असत्ता कहेंगे।
वो गौण तो असत्ता, गौण तो वो विशेषण लगा कौन,
अभी अभी आगे क्या हो गया, हम अवांतर की बात कर रहे हैं तो वो सत्ता स्वरूप हो गई, मतलब महासत्ता तो सत्ता हो गई, और भी जो कुछ विशेषण,
उसके जैसे एक रूपता बताई, एक रूपता महासत्ता को लिए कहें, नाना रूपता अवांतर सत्ता को नहीं कहते, यानी एक रूपता किसको कहेंगे, अवांतर सत्ता को, और नाना रूपता महासत्ता को कहेंगे, ये उसके अन्य विशेषण है, वो आपस में पलटी नहीं होगी। सत्ता असत्ता नाम का विशेषण दोनों में किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम सत्ता कहेंगे, मुख्य को सत्ता कहेंगे, गौण को असत्ता कहेंगे। परंतु उसके जो विशेषण है ना, सात नंबर का प्रश्न निकालना, पेज नंबर 7, 21 नंबर के श्लोक के ऊपर के जो पैराग्राफ है भावार्थ वाला, एक रूपता अवांतर सत्ता को कहते हैं, यानी वो अवांतर सत्ता का वो एक विशेषण हो गया, एक रूपता, उसका दूसरा नाम भी कहेंगे हम, उसको विशेषता भी कहेंगे, और नाना रूपता महासत्ता को कहते हैं। और ये जो एक रूपता अनेक रूपता है या नाना रूपता, वो आपस में उल्टा सुलटा नहीं होगा, जैसे हम सत्ता और असत्ता दोनों पर अप्लाई हो सकती है, वैसे एक रूपता नाना रूपता दोनों पर अप्लाई नहीं होगी, एक रूपता अवांतर सत्ता के लिए ही होगा और नाना रूपता महासत्ता को नहीं होगा। भावार्थ देखो, एक रूपता अवांतर सत्ता को कहते हैं और नाना रूपता महासत्ता को कहते हैं।
यहाँ ध्यान रहे, एक रूप सत्ता महासत्ता को और नाना रूप सत्ता अवांतर सत्ता को,
नहीं कह देंगे। पहले लाइन हमने पढ़ी तो उसको नहीं देखा, जो नहीं कहते उसको पढ़ दिया।
अभी यहाँ जो बता रहे पेज नंबर
8
किंतु शेष विशेषण जो विस्तार है वह उसका ही रहेगा।
वही तो एक रूपता
अवान्तर सत्ता का ही रहेगा। और
यानी नाना रूपता ये विशेषण महासत्ता के लिए ही होगा, वो अवान्तर सत्ता के लिए नहीं लगेगा, ये उसके इस वाक्य का अर्थ है।
वो एक रूपता का कुछ मीनिंग है कि वो उसका दूसरा
एक रूपा है ना, वो तो अलग
क्या प्रश्न क्या है?
एक रूपा का मीनिंग क्या है?
एक रूपता है ना, द्रव्य है, द्रव्य है, द्रव्य है,
वो अपने अपने रूप से है ना।
हाँ। एक रूपता एक सदृशता है, अब उसमें विशेषता जो उसकी बात नहीं करते, द्रव्य का द्रव्य बना जो है वो है
नाना रूपता ने, उसमें अलग अलग द्रव्य है ना। पर सदृशता क्या है कि अस्तित्व सत की अपेक्षा सब समान है, समान होते हुए भी उसकी अपनी अपनी विशेषता, अपना अपना जिसको कहेंगे अस्तित्व भिन्न भिन्न है।
और दूसरा है तो 61 पेज पे महासत्ता किसे कहते हैं?
हाँ, वो सब आएगी बात आगे। हाँ,
61 पेज प्रश्न
देखो, प्रश्नोत्तर कहे ना आगे, 61 नंबर का पेज निकालो।
61
पेज नंबर 61 पहले 10 नंबर का प्रश्न देखेंगे। महासत्ता किसको कहते हैं? सामान्य को, अखंड को, अभेद को। अवांतर सत्ता किसको कहते हैं? विशेष को, खंड को और भेद को। तो कहते महासत्ता अवान्तर सत्ता भिन्न भिन्न है क्या? नहीं, प्रदेश एक ही है, स्वरूप एक ही है, केवल अपेक्षाकृत भेद है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। अभी यहां महासत्ता अलग से बात बताइए, अभेद की दृष्टि से वह सारी महासत्ता रूप दिखती है और भेद की दृष्टि से वही सारी अवान्तर सत्ता रूप दिखती है। जैसे एक ही वस्तु को सत्रूप देखना महासत्ता है और उसी को जीव रूप देखना अवान्तर सत्ता है। हम क्रम से जाएंगे, नहीं तो क्या होगा कि कहीं कोई अपेक्षा से अन्य अन्य बातें आती हैं तो हाँ, तो वहाँ उसका अर्थ यहाँ बैठेगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ तो केवल सभी द्रव्यों को मिलकर यहाँ महासत्ता कह रहे हैं, वहां तो उन्होंने एक ही द्रव्य में भी वो घटित करके बताया। अभी हम आगे बढ़ेंगे, ये महासत्ता के जो अन्य अन्य जो नाम है उसको हम देखेंगे। मिला 8 नंबर के पृष्ठ पर भावार्थ के नीचे, महासत्ता को नाना रूपा, उसी का दूसरा नाम है सविश्व रूपा। नाना इन्हें अनेक, वो गुजराती वाला नाना मोटा वो नहीं। हाँ, नाना भाई कहते हैं ना आपको,
वो नाना भाई ने नाना ले आया
कि वो नाना
सभी द्रव्य दृष्टि।
दूसरा नाम है सर्व पदार्थ स्थिता, यानी सभी पर्याय पदार्थों में पाए जाती है सर्व पदार्थ स्थिता। द्रव्योत्पाद व्यात्मिका, यानी त्रिलक्षणा जिसको कहेंगे, एका
और अनंत पर्याय,
ये उसके अलग अलग नाम है। अब अवान्तर सत्ता को एक रूपा, एक पदार्थ स्थिता, अत्रिलक्षणा, अनेका और एक पर्याय कहते हैं। ऊपर एका लिखा ना, इसलिए अनेका लिखी। अत्रिलक्षण है, उसमें तीनों लक्षणों को मिलकर वो द्रव्य उत्पाद व्यात्मक वो हो गई महासत्ता। इसको समझाएंगे सबको अलग अलग एक एक करके। ये सार अभी बता रहे हैं ना, उसमें आएगी बात आगे। इनमें महासत्ता यानी सामान्य जो है वो द्रव्यार्थिक नय का विषय है, और अवांतर सत्ता विशेष यानी भेद पर्यायार्थिक नय का विषय है। अभी उन्होंने एक ही द्रव्य में वो घटित कर रहे हैं। हाँ। वस्तु में श्रुत ज्ञान की अपेक्षा दो अंश है और उन दोनों अंशों को ये दो नए दिखलाते हैं। वास्तव में वस्तु तो प्रमाणात्मक है, यही सापेक्षता से प्रयोजन है। सापेक्षता ने एक दूसरे की अपेक्षा क्या है कि प्रमाण रूप वस्तु में दोनों एट ए टाइम पाए जाते हैं। जानते समय कहते समय उसको एक एक नए से कह सकते हैं, जान सकते हैं, परंतु एक नए से कहने पर भी दूसरे नए की अपेक्षा है, इसलिए सापेक्षता है। और इसीलिए सापेक्ष नय सम्यक है, निरपेक्ष मिथ्या है, यानी निरपेक्ष नय मिथ्या है। अभेद दृष्टि से उसी को सामान्य कहते हैं और भेद दृष्टि से उसी को विशेष कहते हैं। यानी अभेद दृष्टि से द्रव्य को हम सामान्य कहेंगे, हमको सामान्य नजर आएगा द्रव्य, विशेष के भेद की दृष्टि से देखेंगे तो उसी को हम विशेष रूप से देखेंगे, विशेष कहेंगे उसको। प्रमाण दृष्टि से वही भेदाभेदात्मक है, वस्तु कैसी है भेदाभेदात्मक है, सामान्य विशेषात्मक है। महासत्ता अवांतर सत्ता को विशेष स्पष्ट समझने के लिए आगे निम्नलिखित श्लोकों का मनन करें। कल हमने 265 को देखा था, वैसे नंबर 264 से 308 तक तथा 756 से 759 तक, यानी ये बातें आगे विस्तार से आने वाली है। अभी ये जो लिखे हैं, ये किसके आधार से लिखे हैं? तो श्लोक 15 से 22 तक श्री पंचास्तिकाय गाथा 8-9 के आधार से रचे गए। अभी श्लोक 15 से 22 तक का सार पहले देखेंगे हम। यहाँ पर पदार्थों में स्वरूप का अवबोधक यानी ज्ञान कराने वाला के स्वरूप का अवबोधक अन्वय रूप जो धर्म पाया जाता है उसे सत्ता कहते हैं। यह अपने उत्पाद व्यय और द्रव्य स्वभाव के द्वारा नाना पदार्थों में व्याप्त होकर रहती है, इसलिए नाना रूपा है। अब ये सत्ता किसमें तो सभी द्रव्यों में सत्ता पाई जाती है, और वो कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है? तो उत्पाद व्यय द्रव्य, हमने सूत्र पढ़े सत द्रव्य लक्षण, और वो सत कैसा है? तो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो कहते हैं ये ऐसा जो उसका सत का स्वभाव कैसा है, तो उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है और उसके द्वारा वो नाना पदार्थों में व्याप्त होकर रहती है, कौन? सत्ता, इसलिए नाना रूपा है, अनेक में व्याप्त होकर रहती ना, ऐसा एक भी पदार्थ नहीं जो सत स्वरूप न हो, इसलिए सर्व पदार्थ स्थिता है। ये अलग अलग नाम क्यों पड़े हैं उसको यहाँ बता रहे। अब उत्पाद व्यय और द्रव्य स्वभाव होने से त्रिलक्षणात्मिका है, उसी को त्रिलक्षणात्मिका कह दिया। सब पदार्थों में अन्वय रूप से पाई जाती है इसलिए एका है, यानी सदृशता है ना, और अनंत पर्यायों का आधार है इसलिए अनंत पर्यायात्मिका है। अन्वय रूप से चेंज, अन्वय रूप का अर्थ होता है कंटिन्यूएशन, इन कंटिन्यूटी, यानी सर्व पदार्थों में है उसी सत्ता पाई जाती है, इसलिए उसको एका कहा, और अनंत पर्यायों का आधार है इसलिए अनंत पर्यायात्मक। यद्यपि सत्ता का स्वरूप उक्त प्रकार का है तो भी यह केवल अन्वय रूप से ही विचार करने पर प्राप्त होता है। अन्वय ने वही का वही वो जो है, ऐसा अगर हम विचार करेंगे तो ये प्राप्त होता है। व्यतिरेक रूप से विचार करने पर तो इसकी स्थिति ठीक इससे उल्टी हो जाती है। अन्वय ने यह वही है, ये जो है वो अन्वय है, और ये भिन्न है वो भिन्न है, वो व्यतिरेक हो जाता है, यह वह नहीं है, इसको व्यतिरेक कहेंगे। इसी से उसे उक्त कथन के प्रतिपक्षवादी भी बतलाया गया है। आशय है, यह है, वस्तु न सामान्यात्मक ही है और न विशेषात्मक ही है, यानी ना वो अकेली सामान्यात्मक है और न मात्र विशेषात्मक है, तो कैसी है? उभयात्मक है, यानी दोनों रूप है, एट ए टाइम, जिसकी सिद्धि विवक्षा भेद से होती है, यानी उसको एक एक को मुख्य गौण करके उसकी विवक्षा, उसका कथन हो सकता है। नए पक्ष, यह विवक्षा भेद का ही पर्यायवाची है, पर्यायवाची ने एकार्थवाची, यानी उनका मीनिंग सेम है। आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं समान अर्थ, यानी जो दो शब्दों का वही अर्थ होगा तो उसको क्या कहेंगे? इक्वल मीनिंग वाले, सिमिलर ने, उसका अर्थ सेम होना चाहिए। सिमिली में ये सिमिली का अर्थ होता है उसके समानता की, सदृशता किसी के साथ, सिमिली ने उसकी सिमिली क्या उपमा के लिए भी कहेंगे सिमिली, यानी विथ सेम मीनिंग, अनदर वर्ड विथ सेम मीनिंग, उसको कहेंगे पर्यायवाची। वो पर्याय से कोई लेना देना नहीं, या एकार्थवाची, दोनों का एक ही अर्थ है, जिसको हम समानार्थी भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? नए पक्ष कहो या विवक्षा भेद कहो, बात एक ही है। इससे सामान्य विशेष रूप से उभयात्मक वस्तु की सिद्धि होती है, यानी नए पक्षों के द्वारा क्या होता है कि वस्तु की सिद्धि होती है। जो वस्तु कैसी है तो प्रमाण है, उभयात्मक है, क्योंकि वस्तु न केवल सामान्यात्मक ही है न केवल विशेषात्मक ही है। इसी से सत्ता को जहाँ सर्व पदार्थ स्थिता आदि रूपा कहा है, वहाँ उसे एक पदार्थ स्थिता आदि रूपा भी बतलाया है। क्योंकि सामान्य विशेषात्मक में एक ही वस्तु में वो स्थित है, इसलिए उसको वैसा ही बताया, क्योंकि सत्ता है ना, वो भी अवान्तर सत्ता ही है। वो भी प्रत्येक सत सामान्य विशेषात्मक है, प्रत्येक सत यानी प्रत्येक द्रव्य जिसकी हयाती है वो सामान्य विशेषात्मक है, उसमें किसी प्रकार भेद न करके जिस किसी द्रव्य को सामने रखकर सत मात्र देखना महासत्ता है, यानी वो जीव है कि पुद्गल है, धर्म है कि अधर्म है, सब कोई भेद मत करो और द्रव्य मात्र को देखो, सत मात्र को देखो, तो उसको कहेंगे महासत्ता। और उसे गुण पर्याय वाला उत्पाद व्यय ध्रुव आदि भेदात्मक रूप देखना अवान्तर सत्ता है। अब कमाल यह है, जब तक आप उसे सतरूप से देख रहे थे तो यह आपको सारा का सारा सत ही दिखता था, और जब आप उसे जीव रूप से देखने लगे तो सारा का सारा जीव रूप दिखने लगा। यानी अभी उसी सत्ता में हमने ये जीव सत्ता, इसी बात है, उसकी कुछ विशेषताओं को देखकर हमने उस द्रव्य को जीव द्रव्य ऐसा कह दिया या उसको हमने जाना, तो ये क्या हुआ? उसके अवान्तर सत्ता हुआ। पहले हमने बस सत इतना ही देखा था, इसी का नाम दो नए या सापेक्षता है। प्रदेश वही के वही है, स्वरूप वही का वही है, चीज एक की एक है, पर वह स्वभाव से इस प्रकार की बनी हुई है कि दोनों रूप दृष्टिगत होती है। उसको मात्र सत रूप से देख सकते हैं, बस अस्तित्व वाली वस्तु है कहे, या वो उसकी विशेषता को जानकर ये जीव वस्तु है सके, सारी की सारी को चाहे जिस रूप से देख लो, इसे देखने का नाम ही विवक्षित यानी मुख्य है, और दूसरे रूप न देखने का नाम ही अविवक्षित या गौण है। पूरी की पूरी वस्तु किसी एक रूप से देख रहे हैं, परंतु उसमें वो दूसरा भी भाग है। संपूर्ण द्रव्य को हम सामान्य रूप से भी देख सकते हैं, उसी को विशेष रूप से भी देख सकते हैं। हमने एक बार एक चित्र देखा था, वह एक ओर खड़े होकर सारा का सारा महात्मा गांधी का चित्र दिखता था, दूसरी ओर खड़े होकर देखने से सारा का सारा वही चित्र पंडित जवाहरलाल नेहरू का दिखता था। आपने देखे कभी ऐसे? नहीं देखे। अरे पहले के जमाने में ऐसे दुकानों में पान पट्टी की दुकान उसमें ऐसे टंगे रहते थे जैसे अब यहाँ नहीं, और उसमें मिरर्स लगे हैं और उसके ऐसे एक एक इंच की या पौने पौने इंच की ऐसी पट्टी काट के रखते हैं। तो उसमें इधर से हम चलते हुए तो पहले ऐसा गांधी दिखेंगे, फिर सेंटर में जाएंगे तो उसको देखो तो नेहरू दिखेंगे, और आगे चल के देखो तो पीछे तीसरे ही किसी को, तीन तीन ऐसी चित्र देखते थे। पहले ये बहुत फैशन थी, बहुत दुकानों में टंगे रहते थे। वो अलग है, वो उसमें अंदर देखने पड़ते। ये ऐसे फोटो में बताया, वही है। वो एंगल से होता है, वो तो चौकोन की तो बात ही अलग है। हाँ। ये फ्लैट ऐसा होता है और उसके अंदर तीन बाजू से देखे तो तीन दिखते हैं। हाँ। शायद आपने भी दिवाली वगैरह पर किसी शहर में किसी दुकान पर देखा हो, वह सामान्य विशेष को देखने का प्रत्यक्ष अच्छा दृष्टांत था। अखंड एक सत को सामान्य कहते हैं और सत के अतिरिक्त जितना भी आगे भेदात्मक विचार विमर्श है सब विशेष है। क्या कहते हैं? बस सत सामान्य ने अभी उसमें कौन सा द्रव्य है उसकी हम कोई डिफरेंस नहीं करेंगे, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। हम सत मात्र देखेंगे तो उसको कहेंगे ये सत का सामान्य कहते हैं, अखंड एक सत को। और भेद किए, ये जीव द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य, हमने भेद किए, ये विशेष हो गया उसका, वो सब विशेष है। जैसे जीव यह विचार करना विशेष है, असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणों का पिंड मनुष्य पर्याय रूप शरीर ने, आत्मा की बात है, आत्मा की भी मनुष्य पर्याय चल रही है वहां पर, यह सब विशेष सत है। पहले में सभी द्रव्यों के लिए सत मात्र देखना वो सामान्य हुआ, उसमें ये जीव है वो विशेष हुआ। अब जीव द्रव्य कहने से तो अभी उसका हम और उसके डिटेल्स बता रहे हैं, असंख्यात प्रदेशी है, अनंत गुणों का पिंड है, मनुष्य पर्याय भी में विद्यमान है, ये सब क्या है? विशेष सत हो गए उसके। यहां तक एक प्रदेश या एक प्रदेश की छह कोण में से एक कोण, एक अविभाग प्रतिच्छेद, एक समय की पर्याय आदि सब विशेष भेद है। प्रदेश सबके वही है, स्वरूप सबका वही है, केवल अपेक्षाकृत भेद है। यानी हम उसको समझाना चाहते तो असंख्यात प्रदेशी फिर वो एक प्रदेश की कैसा है, या एक प्रदेशी परमाणु उसके छह कोण है वगैरह वगैरह जो बताना है वो सब विशेषताएं हो गई। वो आएगी बात, वो बात आएगी। छह कोण देखो, एक प्रदेश का तो और उसका विभाग नहीं हो सकता। कोई ऐसी वस्तु है बॉक्स टाइप की तो उसमें तो इस तरह से कोण हो सकते, परंतु ये षटकोण कैसे कहेंगे हम? एक परमाणु है तो एक परमाणु को षटकोण बताएं, आदि मध्यांत से रही फिर भी षटकोण वाला कहेंगे। क्यों? ऊपर से देखो, नीचे से देखो, ये चार बाजू से देखो, तो इसको छह कोण वाली वस्तु बताया। वो तो बातें आएगी इसके अंदर। यानी एक ही वस्तु के और अधिक डिटेल्स और उसके विस्तार से और भेद करके समझाने के लिए तो ये क्या हो जाएगी, उसके विशेष विशेष होते चले जाएंगे। इसी को विशेष स्पष्ट करने के लिए आचार्यों ने द्रव्य के सामान्य विशेष, द्रव्य से देखो, हमने देखा ना वस्तु कैसे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु के चतुष्टय होते हैं, तो द्रव्य की अपेक्षा भी उसको क्या कहेंगे? सामान्य विशेष। ये द्रव्य से क्या क्या होगा? सामान्य और विशेष। क्षेत्र की अपेक्षा सामान्य विशेष, काल से सामान्य विशेष और भाव से सामान्य विशेष समझाया। इनसे यह पता चल जाता है अखंड सत में आखिर कहां तक भेद कल्पना संभव है। भेद कल्पना बताया, वस्तु तो अखंड है, उसके भेद नहीं हो सकते, तो परंतु समझाने के लिए समझने के लिए हम कल्पना करके उसको समझेंगे। आत्मा एक अखंड वस्तु है, उसका जो अपना कुछ क्षेत्र है, जैसे हमारा घर इतना बड़ा है तो हम कल्पना करेंगे कि हम 1 स्क्वायर फुट का एक नाप मन में सोचकर फिर उसको गिनती करके हम उसके प्रमाण निकालेंगे, इतना स्क्वायर फुट वाला हमारा घर है, तो उसमें हमने वो स्क्वायर फुट वाले खंड की कल्पना कर दी और हमने घर कितना बड़ा है वो मापा। तो यही कहते हैं यहाँ पर कि अखंड सत्त में, सत्त तो अखंड होता है, कहाँ तक भेद कल्पना संभव है। जैसे प्रत्येक द्रव्य से सामान्य विशेष यह है, जैसे जीव द्रव्य में सत, यह सामान्य जीव सत यह द्रव्य से विशेष, क्या कहते हैं, केवल सत कह दिया, किसी जीव को मात्र सत देखा तो उसमें डिफरेंस के बिना हमने केवल सत मात्र वस्तु जीव को देखा, वो हो गया सामान्य। और उसी को हम ये जीव सत है ऐसा कहेंगे, वो तो द्रव्य से विशेष हो गया, नहीं समझे। सभी द्रव्यों के लिए सत ये शब्द है एप्लीकेबल है, तो सत कह देना जीव को, सत कह देना सामान्य हुआ, और ये जीव सत है ऐसा कह देना ये विशेष हो गया, ये द्रव्य की अपेक्षा विशेष हुआ। द्रव्य से सामान्य क्या है तो उसका लक्षण बता दे सत, और द्रव्य से विशेष क्या हुआ, ये जीव द्रव्य, ये पुद्गल द्रव्य, ये क्या हुआ, यानी जीव सत, पुद्गल सत, धर्म सत, अधर्म सत ऐसा कहेंगे। हर एक सत को हमने अलग अलग ढूंढा पहचाना तो ये द्रव्य से विशेष हो गया, द्रव्य से ने द्रव्य की अपेक्षा विशेष हो गया। देश यह क्षेत्र से सामान्य और असंख्यात प्रदेश यह क्षेत्र से विशेष। क्षेत्र से सामान्य हमने देखना, हर एक द्रव्य का अपना अपना क्षेत्र है, अपना अपना विस्तार है, तो अपना अपना ये उसका विस्तार है, इतने कह देना उसका सामान्य होगा, और उसके प्रदेशों में गिनेंगे असंख्यात प्रदेश, ये एक प्रदेश ये, वो क्या हुआ, वो उसके विशेष हुआ। देखो क्षेत्र से सामान्य उसको देश कहेंगे और असंख्यात प्रदेश यह क्षेत्र से विशेष हो गया। पर्याय यह काल से सामान्य और मनुष्य पर्याय यह काल से विशेष। गुण यह भाव से सामान्य और ज्ञान गुण यह भाव से विशेष। यानी मात्र गुण कह देना यह भाव हो गया ना सामान्य से, और कौन सा गुण है, ज्ञान गुण कहेंगे तो वो भाव की अपेक्षा विशेष हो गया। मनुष्य पर्याय यह लंबे काल चलने वाली जो है उसकी अपेक्षा से बढ़ जाता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, यहाँ वो पहले ये बात आई थी यहाँ पर, मनुष्य पर्याय ने वो आत्मा की पर्याय लेना, यहाँ पर इसी पैराग्राफ में सेकंड लाइन लास्ट में देखो यहाँ लिखा ना असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणों का पिंड, मनुष्य पर्याय रूप यानी शरीर ने आत्मा की बात है वहां, तो यह सब विशेष सत है ये बताया था वहां पर। जीव की मनुष्य पर्याय यानी वो तो असमान जाति द्रव्य पर्याय की बात नहीं है, जीव और शरीर मिलकर की बात नहीं, जीव में वहाँ कुछ विशेषता है कि नहीं, जो मनुष्य जीव है उसके भावों में कुछ विशेषता है, वो जीव की भी अपनी मनुष्य पर्याय चल रही है उसकी अपेक्षा बात। तिरंज की तिरंज पर्याय, वो जो जीव अभी तिरंज पर्याय में रह रहे हैं वो वो व्यवहार कर रहा हो तो बात अलग है, परंतु वो आत्मा की अवस्था कौन सी चल रही है, वो मनुष्य जीव
काल में
पर्याय को काल में लिया, इतने काल तक वो मनुष्य पर्याय चली ना।
अच्छा।
उस अपेक्षा से अब एक और ध्यान रखिए, द्रव्य में जिसको सत कहा वह, क्षेत्र में जिसको देश कहा वह, काल में जिसको पर्याय कहा वह, और भाव में जिसको गुण कहा वह, इनका वाच अर्थ एक ही अखंड सत सामान्य है। चारों शब्दों का सत अर्थ है और विशेष में चीज तो वही है, प्रदेश भी वही है, स्वरूप भी वही है, केवल उसे देखने की दृष्टियां भिन्न भिन्न है। क्या कहें, वस्तु ही कुछ स्वयं सिद्ध ऐसी बनी हुई है, यही सत और उसकी सपक्षता का भाव है जो श्लोक 15-22 तक निरूपित है। क्या कहे, जहां तक शब्द की ओर हमारी सामर्थ्य थी वहां तक समझाने का प्रयत्न किया। विशेष तो गुरुगम अधीन है, गुरु कृपा बिन कभी कोई वस्तु को नहीं पाता, गुरु कृपा बिना कभी कोई वस्तु को नहीं पाता। सम्यक कभी देशना लब्धि, ये ऐसा पढ़ना है, सम्यक्त्व भी सद्गुरु प्रसाद के बिना नहीं होता। सम्यक्त्व भी देशना लब्धि बिना सद्गुरु प्रसाद के नहीं होता, ऐसा लिखा है ना। ये ऐसे अटपटा है, यानी देशना लब्धि बिना सद्गुरु प्रसाद के नहीं होता। सम्यक्त्व भी देश में सम्यक्त्व नहीं होता चाहिए था। हाँ, तो ऐसा हम पढ़ेंगे, सम्यक्त्व भी बिना सद्गुरु प्रसाद के नहीं होता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सद्गुरु प्रसाद के बिना सम्यक्त्व भी नहीं होता। वो सम्यक्त्व भी देशना लब्धि बिना,
सम्यक्त्व भी बिना सद्गुरु प्रसाद के नहीं होता लिखेंगे तो क्या?
वो तो ठीक है, परंतु ये बिना शब्द कैसे पढ़ना है, सद्गुरु प्रसाद के बिना या बिना सद्गुरु प्रसाद के? ये कहते समय ऐसे कह सकते हैं, परंतु जब लिखते समय हो तो उसको अलग से। दो वाक्य बनाओ, सम्यक्त्व तो भी देशना लब्धि के बिना नहीं होता और देशना लब्धि सद्गुरु प्रसाद के बिना नहीं होती।
सद्गुरु कहाँ देशना देते हैं, देशना लब्धि तो हमारी चीज है।
हाँ, परंतु उसमें सद्गुरु निमित्त है ना, देशना के लिए। विशेष स्पष्टता तो साक्षात गुरु के सामने ही बैठकर समझी जा सकती है। आचार्यों ने छोटे छोटे सूत्रों में इतना मर्म भर दिया है, उन्हें हिंदी के हजारों पन्नों में भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता। प्रमाण के लिए देखिए 263 से 308 तक। नोट, इस प्रकार वस्तु को सामान्य विशेषात्मक अखंड सिद्ध करके, वस्तु तो अखंड ही है और वो सामान्य विशेषात्मक है। अब उस वस्तु के विस्तार क्रम का वर्णन करते हैं, विस्तार क्रम कहो या चौड़ाई कहो, वो चौड़ाई को विष्कम्भ ऐसा भी नाम आता है कि द्रव्य के विष्कम्भ क्रम का वर्णन, यानी चौड़ाई का वर्णन 27 से 37 तक, 23 से 37 तक, यानी वो कितनी बड़ी है, यानी कैसी फैली है,
क्षेत्र की बात है कि क्या बात
है? हाँ, प्रदेश कल्पना अखंड वस्तु में, जैसे हम कपड़ा कितना चौड़ा है कहेंगे, कितना कितना मीटर कपड़ा लेना है, उसका पन्ना कितना है, इतना नाप के लाया तो वो तो हम कहेंगे इतने मीटर लाया, पर इतने मीटर लाया तो उसका पन्ना तो अलग हो ना, कोई तो डबल पन्ना वाला कोई सिंगल पन्ना वाला, तो उतना ही 10 मीटर लाया हमने कपड़ा, पर दोनों का क्षेत्र तो अलग अलग होगा, क्षेत्र के लिए लंबाई चौड़ाई दोनों का गुणा करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर भी प्रदेशों में नापेंगे वस्तु को, अब हम पढ़ेंगे यहाँ क्या कहना चाहते हैं। ये शंका से ही शुरुआत हो जाता है 23 नंबर का। ये सेकंड लाइन में वो जो है लास्ट बट वन शब्द वचस्तविति चेत, वो उसकी जो ऊपर की इकार है ना वेलांटी मराठी में कहते हैं, वच के बाद चालू हो जाती है स्व तक पूरे के पूरी है वचस्तविति। वच तू इति चेत, हम पहले पढ़ेंगे श्लोक पढ़ेंगे। एकस्मिन् इह वस्तुं न्यनादि निदने च निर्विकल्पे च वेद निदानं किं तर येनैतज्जृम्भते वचस्त्विति चेत्। एकस्मिन् इह वस्तुनि अनादि निदने च निर्विकल्पे च, ये वस्तु कैसी अनादि निदन और निर्विकल्प है, ऐसी एक ही एकस्मिन् यानी एक ही वस्तु में भेद निदानम किम, तो ये भेद क्यों करते हैं, भेद का कारण क्या है, वस्तु तो एक ही कह रहे हैं, एक अभी बता रहे कि ये तो निर्विकल्प है अभेद अखंड है, और अभेद अखंड करके अभी उसमें भेद करके समझा रहे हो ऐसा क्यों। देखो हम इसका अर्थ पढ़ेंगे, वस्तु एक है वह अनादि है अनंत है, अनादि निधन का ना अनादि और निधन, अनादि अनंत है और निर्विकल्प ने अखंड है, ऐसी वस्तु में भेद का क्या कारण है, जिस कारण से आप यह वचन कहते हैं कि सत सपक्ष सहित है भेद सहित है। किम तद ए नहीं तत् जृंभते वच तु इति चेत, यानी जिसके कारण ये भेद का कारण ही क्या है कि वो कहते हैं कि ये जो सत है वो ये जो सत कैसा है अखंड है, परंतु वो उसके विपक्ष के साथ वाला अखंड होने पर भी उसके भेद होते हैं, भेद है उसमें यानी उसका विपक्ष भी विद्यमान है, तो जब आप वस्तु को अखंड ही कह रहे थे तो वो तो भेद की बात ही कहाँ आते हैं। तो ब्रैकेट में लिखते हैं, आपने पूर्व श्लोक नंबर 8 में यह प्रतिज्ञा की थी कि वस्तु अनादि अनंत निर्विकल्प एक है, फिर अब आप उसका सपक्ष बतलाकर यानी उसके लिए उसका सपक्ष भी साथ में ये बतलाकर भेद क्यों कर रहे हो, और बिना भेद के सपक्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि अखंड का सपक्ष क्या होगा, तो भेद होगा। यदि भेद है तो आपकी निर्विकल्प अखंडित की प्रतिज्ञा मिथ्या है। आपने जो 8 नंबर के श्लोक में वस्तु जो है एक है वो अखंड है निर्विकल्प है कह दिया है, वो तो झूठ साबित हो जाती है, और यदि अभेद है तो यह सपक्षपना मिथ्या है। प्रश्न ऐसे निकालते हैं कि उसके उत्तर में फंसाना चाहते हैं, ऐसा कहो तो ये मिथ्या, ऐसा कहते नहीं आपका कहना ही झूठ है, ऐसा कहना चाहते
हैं। जो वस्तु सामान्य है वही विशेष है,
यहाँ सामान्य विशेष की बात नहीं हो रही। पहले 8 नंबर में क्या है, 8 नंबर का श्लोक क्या है, निर्विकल्प, तो निर्विकल्प है ना अखंड है, भेद रहित है ना अखंड है, अखंड है कह रहे हो और फिर कहते हो वस्तु वो सपक्ष वाली है, सपक्ष ने भेद का भी स्वीकार कर दिया, तो भेद का स्वीकार किया तो आपकी प्रतिज्ञा खोटी थी, ये कहना चाहते। शंकाकार की शंका है, आपने वस्तु को निर्विकल्प अखंडित की प्रतिज्ञा कही थी वो मिथ्या हो जाएगी, और यदि कहूं अभेदी है तो उसके सपक्षपना बनेगा नहीं, वो तो सर्वथा हमने अभेद मानना पड़ेगा, ये शंकाकार की शंका। अब देखो भावार्थ, यहाँ पर यह प्रश्न, ये प्रश्न को ही समझा रहे हैं, जब वस्तु अखंड द्रव्य है तब सामान्य का प्रतिपक्ष विशेष, एक का प्रतिपक्ष अनेक, उत्पाद व द्रव्य का प्रतिपक्ष प्रत्येक एक लक्षण, यानी त्रिलक्षणा का प्रतिपक्ष एक लक्षण, और अनंत पर्याय का प्रतिपक्ष एक पर्याय आदि जो बहुत सी बातें कही गई है वे ऐसी है जो कि द्रव्य में खंडपने को सिद्ध करती है। द्रव्य कैसे है तो अनंत पर्याय उनका समुदाय है, हमने कह दिया अनादि अनंत पूरा द्रव्य हमने ख्याल में ले लिया, अखंड है ना, वो काल की अपेक्षा भी खंडित नहीं है। वो आते है ना अन्न द्रव्य न द्रव्य खंडयामी न क्षेत्र न खंडयामी न काले न खंडयामी न भावे न खंडयामी, इन्हें अखंड अभेद है, न काल की अपेक्षा खंडित कर सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं अनंत पर्याय को मिलकर वो तो अखंड वस्तु ही है, उसका पक्ष क्या बनेगा, एक ही समय के पर्याय को हम अलग अलग बताएंगे वो उसके खंड खंड हो जाएंगे। यही कह रहे हैं कि देखो सामान्य का प्रतिपक्ष क्या आया, विशेष, वो सप्रतिपक्ष है ऐसा कह दिया, एक कहने से उसका प्रतिपक्ष क्या हुआ अनेक, त्रिलक्षणात्मक कहने से एक लक्षणा हो जाएगी उसका प्रतिपक्ष, और अनंत पर्याय का प्रतिपक्ष हो जाएगी एक पर्याय आदि जो बहुत सी बातें कही गई है वे ऐसी है जो कि द्रव्य में खंडपने को सिद्ध करती, इसलिए वह कौन सा कारण है जिससे द्रव्य में सामान्य विशेष एक अनेक उत्पाद व द्रव्य आदि भेद सिद्ध हो, यानी वो तीन को एकात्मक यानी त्रयात्मक ऐसा इकट्ठा लेना वो तो सामान्य की बात हो जाएगी, और हर एक को भेद भेद करके अलग अलग निकालना वो भेद हो जाते हैं। तो उसके समाधान के लिए तीन गाथा यहाँ बताए, तीन श्लोक बता रहे। अभी इसमें थोड़ा करेक्शन करेंगे फिर पढ़ेंगे इसको। 24 नंबर में सेकंड लाइन विष्कम्भस्य चाहिए, वो डबल भ हुआ है, म को भ लगाना है, वो डबल भ हो गया है। हाँ आगे भी व्योमनी हो गया, व्योमनी व्योमनी चाहिए, म और न चाहिए, व्योमनी वांग गुली विलस्ती हस्तादि चाहिए, वितस्ती नहीं विलस्ती, और वो तो स्ती के ऊपर की वेलांटी है ना, वेलांटी समझते हैं इकार वाली, वो पूरे स्त के ऊपर चाहिए, हाँ तो तक उसको खींच लेना, विलस्ती विलस्ती समझते हैं, ये बीत हाँ, ये विलस्ती और ये हाथ, आप क्या कहते हैं उसको, हम वीत कहते हैं, वो वेद कहते हैं। देखो हम पढ़ेंगे तीनों श्लोक पढ़ेंगे, अंश विभागस्यादिति अखंड देशे महत्यपि द्रव्ये विष्कम्भस्य क्रमतो व्योमनी वांगुलि विलस्ति हस्तादि प्रथमो द्वितीय इत्यादि असंख्य देशास्ततोऽप्यनन्ताश्च अंशानिरंशरूपास्तावन्तो द्रव्यपर्ययाख्यास्ते पर्यायाणामेतत् धर्मयत्वंशकल्पनं द्रव्ये तस्मादिदमनवद्यं सर्वं सुस्तं प्रमाणतश्चापि। ये समाधान कर रहे हैं उस शंका का कि आप अखंड कहते हैं और फिर भेद करते हो तो आपकी या तो प्रतिज्ञा झूठी है या वो अवैध ही है, भेद झूठे है। अर्थ यद्यपि द्रव्य अखंड देश है, नहीं है हमारा हॉल एक बड़ा अखंड है, अखंड देश है और बड़ा भी है, तथापि उसमें अंशों का विभाग कल्पित किया जाता है। ये घर का उदाहरण मैं बहुत बार लिया, जिस प्रकार आकाश में चौड़ाई के क्रम से एक अंगुल आकाश, एक विलस्त आकाश, एक हाथ आकाश आदि अंश विभाग किया जाता है। आकाश में हमने कोई नापना है, स्पेस जिसको हम कहेंगे, हमने रूप का उदाहरण दिया था, तो हमने तो एक अंगुल इतना ये यूनिट बनाया, या एक विलस्त वेद जिसको कहेंगे, एक हाथ आकाश, ये हाथ में इतना भी आता है, आदि अंश विभाग किया जाता है। उसी प्रकार अखंड देशी महान द्रव्य में, अखंड देशी यानी उसका विस्तार, प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना अखंड है। जीव भले हम असंख्यात प्रदेशी कहते हैं परंतु वो अखंड एक है, ये उसका वॉल्यूम जो कुछ है, तो उसके अपने प्रदेश मिलकर एक अखंड द्रव्य है वो। तो कहते हैं कि अखंड देशी महान द्रव्य में चौड़ाई के क्रम से पहला, दूसरा इत्यादि असंख्यात प्रदेश, उससे भी आगे अनंत प्रदेश रूप अंश विभाग किया जाता है। बड़ा आकाश द्रव्य है तो उसमें अनंत अंश की कल्पना की जाती है, क्योंकि छोटा सबसे हमने एक प्रदेश कल्पना कर दी है। जितने भी एक द्रव्य में निरंश अंश है, ये अंश को भी निरंश का, यानी स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट। निरंश अंश का अर्थ क्या है? जिसका दूसरा अभी मेरे विभाग नहीं हो सकता, अब क्षेत्र की अपेक्षा दूसरा विभाग नहीं होता, उसको हम प्रदेश कहेंगे। तो कहते कि जिसका दूसरा अंश न हो सके उसको अविभागी अंश कहेंगे, कि जितने भी एक द्रव्य में निरंश अंश है यानी अविभागी अंश है, उतनी वे उस द्रव्य की द्रव्य पर्याय समझनी चाहिए, अर्थात एक द्रव्य की चौड़ाई समझने के लिए उसके अखंड देश में जो प्रदेश कल्पना है वे द्रव्य पर्याय कहलाती है। प्रत्येक अंश को ही द्रव्य पर्याय कहते हैं, क्योंकि द्रव्य में जो अंशों की कल्पना की जाती है वही पर्यायों का स्वरूप है। ये चौड़ाई की अपेक्षा उसको कहा पर्याय ने, भेद पर्याय ने उसका अंश। हम हमेशा पर्याय किसको कहेंगे? काल की अपेक्षा जो अनादि अनंत द्रव्य फैला हुआ है, द्रव्य की विद्यमानता अनादि अनंत है और उसके एक एक समय के हमने टुकड़े कर दिया, अंश कर दिए, तो उसको हम पर्याय कहते, हमेशा एक समय की पर्याय कहते। यहाँ क्या कहा? पर्याय का अर्थ भेद। एक अखंड इतना बड़ा द्रव्य है, हमारे पास इतना बड़ा द्रव्य है और उसको प्रदेशों की अपेक्षा भी इसमें एक एक जो चौकोन दिख रहे हैं उसको हम एक एक प्रदेश मानेंगे, तो हम एडजेसेंट एक 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 को गिनते चले जाएंगे, तो एक पहला, एक दूसरा, एक तीसरा, इस तरह से हम उसको गिन सकते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? प्रत्येक अंश को ही द्रव्य पर्याय कहते हैं, क्योंकि द्रव्य में जो अंशों की कल्पना की जाती है वही पर्यायों का स्वरूप है। यहाँ हमने काल की अपेक्षा देखा था, अनादि अनंत काल के एक एक समय का अंश कर दिया, उसको हमने पर्याय कहा। यहाँ जो वस्तु फैली है उसके एक एक प्रदेश की जो हमने अंश की कल्पना की है उसको भी पर्याय कहा, यह द्रव्य की पर्याय कहे उसको। इसलिए यह सब अंश कल्पना निर्दोष है और प्रमाण से भी सुव्यवस्थित है, यानी उसकी कल्पना करके वस्तु को देखने में कोई उसके बाधित नहीं होता, उसका स्वरूप अखंड ऐसा ही अबाधित रह जाता है। भावार्थ समाधान करते हैं कि भेद दो प्रकार से होता है, एक तो ऐसा जैसे लकड़ी के दो टुकड़े, यह तो खंड रूप भेद है, यानी उसके टुकड़े कर दिए, यानी उसके दो प्रदेश भिन्न भिन्न कर दिए। दूसरा ऐसे जैसे एक अखंड धोती में 10 गज का भेद करना, यह नीचे फुटनोट में लिखा है, देखो यह धोती का मोटा दृष्टांत, दृष्टांत तो 100% लागू नहीं होता, पार्शल एप्लीकेशन केवल होता है उसको। तो कहते हैं यह मोटा दृष्टांत, मोटा ने स्थूल दृष्टांत केवल समझाने के दिया है, क्योंकि धोती का टुकड़ा हो सकता है पर वस्तु का नहीं, इसलिए हमने वो हॉल का उदाहरण लिया। उसमें कोई टुकड़े तो नहीं होते, कितना बड़ा है हमारा हॉल। तो कहते एक अखंड धोती में 10 गज का भेद करना, एक गज ये नापता ना पहले, अभी उसका मीटर कहो आप, कुछ बात नहीं है। 10 गज की धोती कहने से कहीं 10 टुकड़े नहीं हो गए, किंतु 10 गज कहे बिना वह धोती कितनी बड़ी है इसका परिज्ञान नहीं होता। हमको पैंट सिलानी है, हाँ तो कितने मीटर कपड़ा लगता है हमको पता नहीं, कितना लगता है पैंट के लिए कपड़ा? जितनी हाइट होगी, और ये है ना यहाँ स्पेशली हाइट है जितनी हाइट है ना, हाँ तो यहाँ अखंड धोती का परिज्ञान कराने के लिए देश, इससे अखंड धोती की प्रतिज्ञा भंग नहीं होती। हमने ये मान के स्वरूप में देखा था, जब द्रव्य मान कहेंगे तो अलग अलग भिन्न भिन्न है, यहाँ संख्या बताई जाती है, क्योंकि यहाँ 10 लोग बैठे हैं, तो 10 संख्या नहीं 10 अलग अलग है लोग की। जब क्षेत्र गिना जाता है, अखंड को हम किसी यूनिट से नापा जाता है, वहां क्षेत्र के टुकड़े नहीं होते, वो क्षेत्र अखंड रहता है। काल को भी हम समयों में गिनेंगे, हमने 1 घंटे भर स्वाध्याय किया, उसके भी टुकड़े नहीं हो रहे, फिर भी हमने गिना उसको समयों में, सेकंडों में, मिनटों में, घंटों में। तो कहते इसलिए अखंड धोती की प्रतिज्ञा भंग नहीं होती। इस प्रकार भाई यहाँ सपक्ष कहने से जैसा तू खंड भेद समझ गया है वह बात नहीं है, वस्तु के 2 टुकड़े नहीं किए हैं, किंतु वस्तु तो प्रतिज्ञा अनुसार निर्विकल्प अखंड ही है। केवल उस अखंड का परिज्ञान कराने के लिए, वो अखंड वस्तु कैसी है, कितनी बड़ी है, क्या क्या है उसमें, वो समझाने के लिए, उसका ज्ञान कराने के लिए विधि पूर्वक खंड किया जाता है। जैसे आकाश त्रिकाल एक अखंड बड़ी भारी वस्तु है, किंतु जगत में एक अंगुल जगह, एक हाथ जगह, जगह ने आकाश कितनी जगह रोकते उसको आकाश कहेंगे, ऐसा भेद किया जाता है। ठीक इस प्रकार हमारा तत्व तो अखंडित ही है, किंतु तुझे बोध कराने के लिए भेद करते हैं, यानी जीव को, जीवों को समझाने के लिए, बोध कराने के लिए अखंड वस्तु को भेद करके समझाया जाता है। तो समझने के लिए हमको भेद को भी समझना है, और भेद में ही नहीं रुकना है, वो भेद को समझकर अभेद अखंड वस्तु को ख्याल में ले जाना, क्योंकि अभेद को समझने के लिए तो हमने भेद किए थे, अब हम यही रुकेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देतहु।